आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा। नरेंद्र मोदी ने चीन का 2 दिवसीय दौरा किया। इस दौरे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी अनौपचारिक मुलाकातें हुईं। चीन के वुहान शहर में ये मुलाकातें हुईं और इस दौरान नाव की सवारी का भी कार्यक्रम रहा। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे के बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत का फोकस भारत चीन सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर था। हमने अपने आर्थिक सहयोग को गति देने के तरीकों पर बात की, साथ ही लोगों के बीच रिश्तों को लेकर चर्चा हुई। दूसरे क्षेत्र जिन पर हमने बात की उनमें कृषि, तकनीक, ऊर्जा और पर्यटन शामिल हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद गंभीर मुद्दा रहा है। 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है। आपस में अविश्वास लंबे समय से चल रहा है। पिछले साल ही भारत चीन सीमा पर भूटान के डोकलाम में दोनों देशों की सेनाओं के बीच 73 दिनों तक गतिरोध चलता रहा। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने इस यात्रा पर चर्चा करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच 3 मुद्दे विशेष रूप से महत्व रखते हैं और देखना यह है कि इन मुद्दों पर कैसे प्रगति होती है।
मुद्दे बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा ट्रेड सरप्लस, जहां पर हमें चीन की जरूरत है। ट्रेड सरप्लस का मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि जो भारत चीन से आयात करता है, इम्पोर्ट करता है, वो 5,12,000 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट करता है और जो भारत चीन को निर्यात करता है वो 1,63,000 करोड़ रुपये करता है। यानी 3,49,000 करोड़ रुपये का डेफिसिट है। अगर हमें बराबरी के स्तर पर आना है तो हमें अपने निर्यात बढ़ाने होंगे चीन को 3,49,000 करोड़। और वो निर्यात हम कहाँ बढ़ाएंगे? दुनिया में सारी मैन्युफैक्चरिंग अधिकतर चीन में ही होती है, दुनिया में के देशों में जो सामान बिकता है। तो हमारे पास सिर्फ 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ हम अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं। एक सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और दूसरा सेक्टर है फार्मा का। फार्मा माने जो दवाइयाँ हम बनाते हैं, वहाँ पर चीन हमसे पीछे है। तो हम यहाँ पर निर्यात बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या इतना बढ़ा सकते हैं कि 3,49,000 करोड़ ये जो डेफिसिट है ये पूरा हो जाए? दूसरा मुद्दा जो है जहाँ पर हमारा हाथ नीचे है वो है बॉर्डर इशू, अरुणाचल, अक्साइ चिन, डोकलाम। उसके अलावा ये जो कॉरिडोर है पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर, और डोकलाम वाला इशू हमारा बॉर्डर इशू नहीं है वैसे, ये भूटान का बॉर्डर इशू है। लेकिन क्योंकि हमारी ट्रीटी भूटान से है, उसके हितों की रक्षा करना है, हितों की हिफाजत करना है, इसलिए हम वहाँ पर हैं। दूसरे, अगर भूटान की ही सरजमीन पर, जिसको लेकर भूटान और चीन में विवाद है, चीन आखिरी बॉर्डर तक आ जाता है तो वो जो इलाका सारा है उससे हमें ख़तरा होता है। हमारे जो उत्तर पूर्वी भारत के हिस्से हैं उनको खतरा होता है, हम कटते हैं उससे। तो लिहाजा भारत वहाँ पर है और चीन ने भी हैरान कर दिया अपनी सैन्य शक्ति दिखाकर, अपने प्रोपेगेंडा से, और हमने भी अपनी बहुत सारी फौज वहाँ पर तैनात करी। लेकिन इसी दौरान चीन ने पहले ही कह दिया था कि जब हॉस्टिलिटीज़, ये जो रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरारें आ गई थी और गुस्सा आ गया था, तब चीन ने पहले ही कह दिया था कि 8 महीने का एक समय है। 8 महीने का समय वो था जब वहाँ बर्फ़ गिरती है और बहुत सर्दी होती है, गतिविधि नहीं होती। उसके बाद चीन ने वहाँ पर फॉरवर्ड पोस्ट बनाई हैं, हेलीपैड बनाए हैं, फ़ौज के रहने के और भी चीज़ें बनाई हैं, सुविधाएँ बनाई हैं। मैंने आपको बताया बॉर्डर इश्यूज़ भी हैं जैसे अक्साइ चिन, अरुणाचल और डोकलाम। हमें कहीं ना कहीं तो ट्रेड ऑफ करना होगा। तीसरा, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में चीन हमारी जो मौजूदगी है वो रोकता रहा है। हमें वहाँ पर चीन की मदद की, चीन की कोऑपरेशन की, सहयोग की ज़रूरत है, ये भी हमारी ज़रूरत है। चीन कहता आया है कि अगर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को मेंबरशिप देनी है, उसको उसका हिस्सा बनाना है, तो पाकिस्तान को भी देनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है। सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो चीन हमेशा रोकता आया है, तो वहाँ पर भी हमें चीन की ज़रूरत है। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है हमें वहाँ पर भी हमें अपने हितों की रक्षा करनी है, जो गिलगित और बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। ये POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम POK कहते हैं, पाकिस्तानी इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम अपने कश्मीर को अपना कश्मीर कहते हैं, वो उसे मकबूज़ा कश्मीर कहते हैं कि जो भारत के कब्ज़े में है। बहरहाल वहाँ से जो रास्ता निकलता है इकोनॉमिक, ये जो गिलगित और बाल्टिस्तान से इकोनॉमिक कॉरिडोर, यही ये भी हमारी ज़रूरत है। उसके अलावा एक बात और साफ है कि ये जो मीटिंग हो रही है इसमें अमेरिका का प्रेशर भी है, इसमें भारत की लाल लाल आंखें नहीं हैं।
बताया जाता है कि मोदी और जिनपिंग के बीच बातचीत में भी लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का मामला सामने आया और इस पर शीर्ष नेतृत्व ने अपनी अपनी सेनाओं को रणनीतिक मार्गदर्शन देने का फैसला किया ताकि 2017 में डोकलाम में उत्पन्न हुई सैन्य गतिरोध की स्थिति को रोका जा सके। विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि दोनों नेताओं ने माना कि भारतीय और चीनी सीमा पर अमन और शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दोनों ने ये फैसला भी किया कि वो अपनी अपनी सेनाओं को सामरिक महत्व के लिहाज से निर्देश देंगे जिससे विश्वास बहाली की दिशा में उनके बीच भरोसा और तालमेल बनाने के लिए संवाद बढ़ाया जाए।
एंड इट वाज आल्सो द व्यू ऑफ बोथ लीडर्स दैट द टू कंट्रीज हैव द मैच्योरिटी एंड द विजडम टू हैंडल ऑल आवर डिफरेंसेस थ्रू पीसफुल डिस्कशन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ओवरऑल रिलेशनशिप एंड बेयरिंग इन माइंड that we will respect each other's sensitivities, concerns and aspirations. On the issue of the India-China boundary question, the two leaders endorsed the work of the special representatives in their efforts to find a fair, reasonable and mutually acceptable settlement. And the two leaders also underscored that in the meantime, it is important to maintain peace and tranquility in all areas of the India-China border region. And to this end, the two leaders decided that they would issue strategic guidance to their respective militaries to strengthen communication, to build trust and understanding, to implement various confidence building measures which have already been agreed upon by the two sides, and to strengthen existing institutional mechanisms to prevent and manage situations in the border areas.
टीकाकार ये मानते हैं कि भारत और चीन के बीच बातचीत होना ज़रूरी था, विदेश नीति में रणनीतिक समीक्षा के लिहाज से और दोनों देशों के बीच पिछले एक साल से जो संबंध चल रहा था उसमें ये ज़रूरी था कि दोनों देश एक ऐसे माहौल में अपनी बात रख सकें जहां नतीजे का कोई दबाव ना हो। इस अनौपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये संकेत देना चाह रहे थे कि दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व इस संबंध को आगे ले जाना चाहता है। वहीं आरएसएस के विचारक राम माधव ने इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में लिखा कि इस यात्रा से किसी नतीजे की आशा नहीं रखी जा सकती, ये आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाने की यात्रा है। भारतीय प्रधानमंत्री जिस समय चीन की यात्रा पर थे उस समय उनका एक वीडियो खूब चर्चा में रहा जिसमें वो इससे पहले कांग्रेस सरकार के ज़माने में सरकार पर बहुत तेज हमला करते हुए चीन को आंखें दिखाने की बात कर रहे थे।
बड़ी बयानबाजी करके भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, उसके बजाय हिंदुस्तान विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है, डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए।
ये संकेत भी मिले कि दोनों देश अफगानिस्तान में संयुक्त परियोजना पर काम कर सकते हैं। भारत को इस मामले में आपसी सहयोग से बढ़कर इस आयाम से रुचि है कि इस तरह अफगानिस्तान में पाकिस्तान का प्रभाव कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन ये भी तथ्य है कि चीन भारत के साथ किसी भी सहयोग में पाकिस्तान के हितों को शायद ही नज़रअंदाज करेगा। चीन भारत को अपना प्रतिस्पर्धी समझता है। चीन ने अपनी नीतियों से श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों में भारत का प्रभाव तेजी से कम किया है। इन परिस्थितियों में शायद ही कोई इस बात को मानेगा कि अफगानिस्तान में भारत के साथ चीन का सहयोग हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा से दूर होगा। कुछ टीकाकार इस पूरे मुद्दे को बहुपक्षीय मानते हैं। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर रिश्ते में सुधार नहीं हुआ तो चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना, जिसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक हिस्सा है, उसमें रुकावट आएगी। हम एक नई दिशा में जा रहे हैं क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत, चीन और पाकिस्तान, इसी तरह रूस भी शामिल होंगे। ये चीन के हित में है कि भारत पाकिस्तान आर्थिक मामले में सहयोग करें, तो संभव है कि चीन की ओर से ये कोशिश हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो। दोनों देशों के बीच हुई इस अनौपचारिक बातचीत पर पहली बार भारत के राजनीतिक हलकों में सहमति नहीं बनी। विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में विपक्ष को विश्वास में क्यों नहीं लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चीन तो गए हैं लेकिन उनके पास कोई एजेंडा नहीं है।
चाइना में मैंने अखबार में पढ़ा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और चाइना के प्रेसिडेंट चाय चख रहे हैं, चाय चखी जा रही है, बिना एजेंडा के डिस्कशन चल रहा है। पहले गुजरात में मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति झूला झूले, अब चाइना में बिना एजेंडा के डिस्कशन चल रहा है। ढोकलाम में चाइना की सेना घुसी हुई है, चाइना हेलीपैड बना रहा है, एयरपोर्ट को एक्सटेंड कर रहा है, अपनी सेना को वहां बैठा रखा है, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चाइना में बैठा हुआ बिना एजेंडा डिस्कशन कर रहा है।
भारत और चीन के आपसी संबंधों को देखा जाए तो उसमें बड़ी जटिलता है। एक ओर दोनों के बीच पुराने मतभेद हैं तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर व्यापार है। दोनों देशों के बीच कई बार तनाव बढ़ जाता है लेकिन परिपक्वता का सबूत देते हुए तनाव को कम किया जाता है। इस बीच अमेरिका की भी एक भूमिका दिखाई देती है। टीकाकार ये समझते हैं कि अमेरिका चीन पर दबाव डालने के लिए भारत को प्रयोग करने की कोशिश करता है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत चीन के साथ अपने समीकरणों को संतुलित बनाने के लिए अमेरिका का सहारा लेता है। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि क्षेत्रीय देश आपसी सहयोग को बढ़ावा दें और अमेरिका जैसी विस्तारवादी शक्तियों को बीच में कूदने का मौका न दें।